Mike Levon.
Krishna.
विष्णुवाद ब्रह्मस्वाद काचार्य स्वान शिष्य वक्तृदाम स्वान गौवाद की जाय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय। नमाचार श्री हरिदास ठाकुर की जाय। निदाई गौर सुंदर की जाय। श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जाय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जाय। निदाई गौर हरि प्रमानंदे।
क्या बोलना है? जो श्लोक है बहुत बड़ा बोलो। कोई बात नहीं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तो जो श्लोक वहां पर लिखा हुआ है, आज सुबह क्लास हुआ, उसी पर हम वार्ता करेंगे। भागवत महापुराण दशम स्कंध अध्याय 11 चाइल्डहुड पास्ट टाइम ऑफ कृष्णा, और श्लोक संख्या 34।
तथा यशोदारोहिण्य एकं सकतं आयश्चिता रेजतु कृष्णरामाभ्यां तत्कथा श्रवणे उत्सुके। तथा यशोदा रोहिण्या एकं सकटमाश्रिते रेजतु कृष्णरामाभ्यां तत्कथा श्रवणोत्सुके। तथा यशोदा रोहिण्या एकं सकटमाश्रिते राज रेजतु कृष्णरामाभ्यां तत्कथा श्रवणोत्सुके। तथा यशोदा रोहिण्या एकं सकटमाश्रिते रेजतु कृष्णरामाभ्यां तत्कथा श्रवणोत्सुके।
तथा तदुपरांत यशोदा रोहिण्यौ, यशोदा तथा रोहिणी एकम सकटम एक बैलगाड़ी पर आस्थिते स्थित थे। रेजतुम उनकी माताएं, सॉरी रेजतुम बहुत सुंदर लग रहे थे कृष्णरामाभ्याम, कृष्ण तथा बलराम अपने माताओं के साथ। तत्कथा कृष्ण और बलराम की लीलाएं, श्रवण उत्सके उत्साह के साथ में उनके लीलाओं को सुन करके आनंदित हो रहे थे। तो अंग्रेजी में है तो मैं पढ़ लेता हूं उसके बाद में। Thus, hearing about the pastime of Krishna and Balaram with great pleasure, Mother Jashoda and Rohini, so as not to be separated from Krishna and Balaram, for even a moment, got up with them on one bullock. In this situation, they all looked very beautiful. Purport. It appears that Mother Jashoda and Rohini could not be separated from Krishna and Balaram even for a moment. They used to pass their time either by taking care of Krishna and Balaram or by chanting about their pastime. Thus, Mother Rohini and Jashoda looked very beautiful. Om Ajnanati Mirandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Dinimilitam Jena Tasmai Sri Guru Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Radha Srivasati Guru Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, तो ये भागवत महापुराण के दशम स्कंध से यह श्लोक है। दशम स्कंध को निरोध कहा गया है भागवत में। भागवत के दस विषय वस्तु हैं अत्र सर्ग विसर्ग च स्थानम पोषण उत्तर मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। निरोध का मतलब होता है बस अब और कुछ नहीं चाहिए, उसे कहते हैं निरोध। जैसे निरोध अथवा बस सेसेशन अंग्रेजी में कहते हैं। अष्टांग योग में इस परिस्थिति को कहा जाता है प्रत्याहार। अब बाहर का कुछ नहीं चाहिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार। तो कृष्ण लीला जो है दशम स्कंध जो है वह निरोध, यानी जो व्यक्ति कृष्ण लीला को सुनता है तो अन्य कुछ सुनने के लिए उसके लिए नहीं रह जाता है, यह बात है। और पहले वो जानते थे इस बात को इसलिए सुनते थे, लेकिन आजकल तो फैशन हो गया है लोग दशम स्कंध सुनना चाहते हैं, एक से नौ स्कंद नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन एक से नौ स्कंद और दशम स्कंद में कोई अंतर नहीं है। शरीर है, शरीर का भाग है, पैर है, पेट है, हाथ है, सिर है, सब शरीर का भाग है। ये नहीं कहें कि हमारा सिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैर काट दो कोई बंद चलता है, नहीं। हम सबका देखभाल करते हैं पूरे शरीर का। ठीक वैसे ही ये भागवत रूपी स्वरूप का, भगवान का ये वाङ्मय स्वरूप है भागवत, तो जो वक्षस्थल है वो निरोध है। तो भक्त को चाहिए कि प्रथम स्कंद से सुनना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चीनी का लड्डू कहीं से खाओ मीठा ही लगेगा। भागवत का प्रथम स्कंद सुनो चाहे दशम स्कंद सुनो कोई अंतर नहीं है। श्लोक अश्लोक अर्धम एव च, चाहे एक श्लोक ही क्यों न सुनो, चाहे एक श्लोक का आधा भी क्यों न सुनो, भगवान प्रसन्न होते हैं। दशम स्कंद में करीब 90 अध्याय हैं और 6 विभाग हैं। एक अध्याय से 5 अध्याय जो है उसे जन्म प्रकरण कहा जाता है। भगवान के जन्म का वर्णन किया गया है अध्याय से 4 अध्याय तक और 5वां अध्याय नंदोत्सव है, तो यह जन्म प्रकरण है। 6 अध्याय से 32 अध्यायों में वर्णन किया गया है वह है राजस प्रकरण, नहीं तामस प्रकरण सॉरी, जहां पर जो तामसी प्रकृति के जो हैं पुतना से शुरू हुआ, तो इन लोगों का भगवान वध किए थे। उसके बाद जो मथुरा लीला है वह है और द्वारका लीला में राजस प्रकरण, जहां पर राजाओं के साथ भगवान डील किए हैं। उसके बाद द्वारका में ही सात्विक प्रकरण है, जहां पर भगवान अपने भक्तों से सुदामा आदि से डील किए हैं। और इस प्रकार से उद्धव गीता इत्यादि जो है वो भक्ति प्रकरण है। तो इस प्रकार से छह प्रकरण में दशम स्कंधों को बांटा गया है। तो तामस प्रकरण से यह श्लोक है। यह श्लोक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नंद बाबा पहले गोकुल में रहते थे। अब गोकुल में बहुत दिन तक रहे। गोकुल का बहुत महिमा है। भगवान स्वयं जब जोग माया को भेजे कि आप जाओ, तो भगवान कहते हैं गच्छम देवीम भद्रम दे, हे देवी तुम जाओ, तुम्हारा वहां कल्याण होगा। गो गोप गो कुले कुले, वहां पर कौन कौन है? ग्वाल बाल लोग हैं, गाये हैं, गोकुल वह स्थान है। खाने पीने का कोई चिंता नहीं है और वहां सब प्रकार से आप सुरक्षित रहोगे। तो गोकुल बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्थली था, लेकिन गोकुल वासियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए, भक्तों के लिए कृष्ण प्राण है। भक्तों का भगवान के साथ में संबंध है, किसी का संबंध है दास्य भाव में, किसी का साख्य भाव में, किसी का वात्सल्य भाव में और किसी का माधुर्य भाव में। लेकिन गोकुल में प्रायः वात्सल्य भाव था, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा मैया को कोई संतान नहीं था। तो गोकुल के जितने लोग थे उन लोगों को एक ही कामना थी कि नंद बाबा को कोई संतान हो जाए, यशोदा मैया को कोई संतान हो जाए, कोई बच्चा हो जाए। देखिए संसार में व्यक्ति अच्छा बन सकता है या खराब बन सकता है, दोनों के बीच में कि अच्छा भी है खराब भी है, नहीं, या तो अच्छा नहीं तो खराब। जो व्यक्ति अच्छा होता है उसके साथ यदि कभी बुरा भी हो जाए तो बहुत से लोग होते हैं उसके लिए प्रार्थना करने वाले, और जो व्यक्ति कुछ बुरा करता है यदि कभी अच्छा भी कुछ होता है तो लोग डाउट से देखते हैं, हाँ कुछ गलती किया होगा, इधर उधर किया होगा, इसे थोड़ा कुछ मिला होगा, और उसका कुछ बुरा हो जाए तो कहें अच्छा मसाले के मरने दो और हो जाना चाहिए, लोग कर्ज करते हैं। तो इसलिए अच्छा रहना चाहिए अपने विचार से, अपने व्यवहार से, अपने वचन से अच्छा रहना चाहिए। जब हम अच्छा रहेंगे तो सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा, प्रेम रहेगा और सब लोगों की मंगलमयी कामना रहेगी। अच्छा होने का सबसे अच्छा तरीका है कृष्ण भावना भावित हो जाना, कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेना। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, जो कृष्ण का भजन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। यही कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। सुचि हाय मुची यदि कृष्ण तजे, और मुची हाय सुचि यदि कृष्ण भजे, यदि कोई कृष्ण का भजन करता है तो पवित्र हो जाता है, अच्छा हो जाता है। सबसे अच्छा चीज है कृष्ण का भक्त बन जाना, और कृष्ण के भक्त का सब लोग सम्मान करते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि नंद बाबा यशोदा मैया बड़े अच्छे थे, सबको सहयोग करने के लिए तैयार रहते थे सब प्रकार से। तो इसलिए जितने भी ब्रजवासी थे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हमेशा नंद बाबा का हितकर थे, हितैषी थे, संतान न होने का दुख होता है। नंद बाबा जिस को संतान नहीं था और लोग जानते थे कि उन्हें दुख है, इसलिए लोग बार बार भगवान से प्रार्थना किया करते हैं कि संतान हो या संतान हो जाए। बुढ़ापे में कृष्ण जन्म लिए थे, तो कृष्ण छोटे बालक थे, वो पूरे ब्रज के लाडले थे, वो नंद यशोदा के ही लाडले नहीं थे, वो पूरे ब्रज के लाडले थे कृष्ण। और कृष्ण लाडला बनना भी चाहते हैं, यदि आप लोग चाहते तो मीरा रोड वाले भी बना सकते हैं कृष्ण को लाडना, ये कोई बड़ा बात नहीं, कोई बना सकता है, कृष्ण बन जाते हैं। ब्रज में हम लोग लीला सुना है कथा कि कितनी बार उलाहनाएं आती जब नंद मावा के यहां, जसा मैया के यहां, कृष्ण कितने बार डंडा भी खा लिए लेकिन फिर ब्रजवासी बुलाते थे चले जाते थे, देखो चाहते हैं कि लोग बुलाएं और मैं जाऊं कृष्ण लाड़ ले। तो कृष्ण पर किसी प्रकार का खरोच आ जाए ये उनसे सहन नहीं हो सकता। तो यह जो प्रसंग है गोकुल से विदाई का प्रसंग है। हम लोग इस संसार में बड़े आसक्त हैं, आसक्ति दुख का सबसे बड़ा कारण है। कभी कभी मैं सुनता हूं कोई व्यक्ति रेंट पर घर लेकर रहता है तो कहता है बड़ी परेशानी है, प्रत्येक 11 महीना छोड़ना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है। हम लोग आसक्त हो जाते हैं, एक जगह पर रहना चाहते हैं, वहां से निकलना नहीं चाहते हैं। ये ब्रजवासी लोग गोकुल में थे और जब इस प्रकार का उपद्रव उत्पन्न हुआ, पुतना शक्तासुर इत्यादि एकादो असुर जब मारे गए कृष्ण के द्वारा, तो सब ब्रजवासियों ने निर्णय किया कि ये स्थान ठीक नहीं है, इस स्थान को त्याग देना चाहिए। और जब बड़े बुजुर्गों ने निर्णय किया उसमें से कोई ऐसा नहीं था जो कि अपोज कर सके, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का जो मत होता है, विचार होता है, वो परिपक्व होता है। दुख की बात है कि आजकल जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो अपने बाप माँ बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे, अरे अभी अब नहीं जानते हैं, अभी तो साइंस बहुत आगे चला गया है, बाप माँ को सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन इनमें ये नहीं जानते हैं कि बाप माँ या बड़े बुजुर्ग जो भी बात कहते हैं वो ठोक ठोक करके पक्का बात है। पहले संस्कार था, लोग स्वीकार कर लेते थे, स्त्रियां भी स्वीकार कर लेती, कोई आर्गुमेंट का सवाल ही नहीं था। यहां देखा जा रहा है कि वे लोग गोकुल त्याग करके और वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। छकड़े पर, गाड़ी पर सब सामान लाद दिए हैं और अब जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। दो चीज इन दो श्लोकों में पढ़ रहा था, देखा एक उन लोगों में उत्साह था नए स्थान पर जाने में। हम लोग को नए स्थान पर जाना हो तो कई एक टेंशन होता है, वो नया जगह होगा, किसी से जान पहचान नहीं होगा, वो सब्जी वाला कहाँ होगा पता नहीं, कहाँ सब्जी लाना पड़ेगा, हमारे यहाँ सहेलियां हैं, सगे हैं, मित्र हैं, वहां पर कौन होगा, सब लोग नए होंगे, तो हजार प्रकार का टेंशन होता है। लेकिन जो डिपेंडेंट होता है उसे कोई टेंशन नहीं होता है। ये छोटे बच्चे हैं वो बाप माँ पर डिपेंडेंट है, बाप माँ को टेंशन है कि ये घर छोड़कर नया घर में जा रहे हैं, लेकिन बच्चा खूब हंसते हुए जा रहा है, हाँ अच्छा है, बड़ा अच्छा है, नया घर में हम जा रहे हैं, उसे कोई टेंशन नहीं। तो यहां पर स्त्रियों का वर्णन किया गया है कि स्त्रियां बड़ी खुश थी, हो सकता है कि पुरुषों को टेंशन होगा लेकिन स्त्रियों को टेंशन बिल्कुल नहीं था। कम से कम इस प्रसंग में जो दो तीन अध्याय दो तीन श्लोक में जो पढ़ा यहां उन लोगों कोई टेंशन नहीं था, और नए स्थान पर जा रही थी तो नया नया साड़ी पहनी थी और पूरा गहना इत्यादि सब पहन करके नए स्थान पर जा रही थी, रोते हुए नहीं जा रही थी। यह दर्शाता है कृष्ण पर डिपेंडेंट। अवश्य राखीबे कृष्ण विश्वास पालन। हम लोगों को आज भगवान में श्रद्धा है लेकिन भगवान में विश्वास नहीं है। श्रद्धा है, नाम जप करते हैं, मंदिर आते हैं, यदि बेटा मर जाए तो क्या फायदा भजन करने से, ये लोग कहेंगे ना कि क्या फायदा, इतना मैं भजन किया, मंदिर में आया, ये किया, डोनेशन भी दिया, बेटा मर गया। लेकिन जिसे विश्वास होता है वो समझता है कि कृष्ण हमारे सुहृद हैं, हमारे हितैषी हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सबके सुहृद हैं। यदि भगवान हमारे सुहृद हैं तो हमारे लिए कुछ गलत काम भगवान नहीं करेंगे, जो करेंगे अच्छा होगा। हो सकता है कि बेटा बड़ा होकर के दुर्योधन का बाप बन जाए, ये भी हो सकता है ना, और भगवान ने देखा कि ये ठीक नहीं है, इसका भक्ति नष्ट हो जाएगा, तो भगवान ने कहा चलो तुम चलो जल्दी हटो हटो। तो जो भगवत परायण है, जिसे पूर्णतया भगवान में विश्वास है, उसे भगवान का कृपा स्वीकार करता है। ब्रजवासियों में भगवान कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास था, छोटे बालक थे कृष्ण लेकिन अटूट विश्वास था, भगवान में अटूट विश्वास था। तो यहां पर इस श्लोक में बताया गया है कि जितनी स्त्रियां थी गोप्यो रूढ़ रथा, वे लोग अपने अपने गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर, यहां पर रथा कहा गया है, रथ पर, बैलगाड़ी को रथ कहा गया है, उस समय वही रथ था, सब लोग आरूढ़ होकर के सज धज कर करके और श्रृंगार कर कर करके बैठी हुई थी, और बैठ कर करके गाने लगी। ये है हमारी परंपरा, गाना। गाने से थकावट नहीं होती है, सुनने से थकावट होती है लेकिन गाने से थकावट नहीं होती है। पहले जमाने में हम देखे, हम तो गांव से हैं, देखे हैं सुबह सुबह माँ हो घर उठ करके और ढेंकी से चावल कूटती थी, चाहे गेहूं पीसती थी, तो कुछ न कुछ गीत गाती थी, उसे थकावट नहीं होता है। किसान लोग हल चलाते थे तो अपने बैल पर ही गाना बनाते थे, वो सिनेमा गाना नहीं गाते थे, वो बनाते कभी भी थे पहले लोग और गाते थे, क्यों, उन्होंने गाना बनाया है तो उसमें आनंद होता है, अपने हाथ का जला हुआ भोजन भी स्वादिष्ट होता है, तो अपने से भोजन बनाए थे, सिनेमा का गाना नहीं गा रहे थे वो लोग। वैसे ही स्त्रियां, वैसे ही शादी विवाह में भले ही गाली देती हूं लेकिन अच्छा लगता है। अभी इधर होता है गाली, यूपी बिहार में होता है ना, खूब गाली होता है लेकिन अच्छा लगता है, थकावट दूर हो जाती, थकावट नहीं होती है। लेकिन आजकल लोग गाना बंद कर दिए हैं, अब लगा लेंगे हेडफोन, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, वो सुन रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो रहा है, इससे थकावट होगी। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, गाओगे और सुनोगे थकावट नहीं होगी, केवल सुनते रहोगे थकावट होगी। तो आजकल लोगों के पास बोलने के लिए ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं लोग, केवल सुनते हैं। लेकिन हमारा प्रोसेस है श्रवणम और कीर्तनम, गाना और सुनना। जब हम महामंत्र का गान करते हैं तो सुनना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से सांसारिक थकावट दूर हो जाएगी इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने और गाने से। तो ये लोग कृष्ण लीला जुगुल प्रत्या, प्रेम से कृष्ण लीला का ये लोग वर्णन कर रहे थे निष्कंठ सुवास अच्छी तरह से ड्रेस थी स्त्रियां और कृष्ण का गुणानुवाद कर रही थी। ये हमारा सभ्यता संस्कृति है। मैं एक बार द्वारिका गया था और देखा वहां स्त्रियां चावल सफाई कर रही थी और वहां पर गा रही थी, कितना अच्छा लग रहा था। भगवान का गुणगान कर रही थी, भगवान का सेवा कर रही थी। यही है आनंदमय जीवन। जीवा से भगवान का गुणानुवाद करना, कान से भगवान का कथा सुनना, मन से भगवान का चिंतन करना, हाथ से भगवान का मंदिर मार्जन करना, पुस्तक वितरण करना, भगवान के लिए माला बनाना, ड्रेस बनाना, भोजन बनाना भगवान के लिए, पैर से भगवान के मंदिर आना, भगवान के धाम इत्यादि जाना, यही हमारे इंद्रियों का परफेक्शन है। तो यहां पर ब्रज की जितनी गोपियां थी वो लोग आनंद मग्न थी गाते हुए। यशोदा मैया भी जब मथनी से मक्खन निकाल रही थी कृष्ण को खिलाने के लिए, वो कथा है ना जहां पर भगवान दामोदर लीला जो हुआ था, यानी गीतानी तद बालक चरितानी च नदी निर्मंथने काल तान स्मरण गायत। यानी गीतानी तब बालक चरितानी च, अपने बालक के चरित्र को यशोदा मैया याद कर रही थी और याद करते करते उसको गा रही थी। दधि निर्मंथने काले, दधि मथ रही थी उस समय इसे गा रही थी। तो दो काम हो गया, एक काम कि जो काम कर रहे थे वो काम भी हो गया, थकावट भी नहीं हुआ और भगवान का भजन भी हो गया, कितना अच्छा चीज है। तो भक्त लोग इस बात को जानते हैं, पहले के लोग इस बात को जानते थे। पहले का साइंस आज के साइंस से बहुत 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 महान था। आज ही मैं जुहू में सुबह में लेक्चर दे रहा था और मैं कह रहा था कि कानपुर में एक मेरा लेक्चर था वोट फॉर इंडिया, आजकल वोट का दिन है ना, वोट फॉर इंडिया वो टॉपिक था, मुझे बोलना था वोट फॉर इंडिया। तो मैं बता रहा था कि हमें जानना चाहिए कि भारत है क्या, भारत का मतलब क्या होता है। भा मतलब प्रकाशित करना और रत मतलब लगे रहना। जो प्रकाश को फैलाने में लगा रहता है वो भारतीय है। और प्रकाश है क्या, कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, कृष्ण ही प्रकाश है। तो जो कृष्ण भावना का प्रचार करना जानता है वो असली भारतीय है। और जो लोग अंधकार फैला रहे हैं वो भारतीय नहीं। अंधकार मतलब भगवान को मत मानो, भगवान मर गया, भगवान नहीं है, हम तुम भगवान है इत्यादि इत्यादि, ये है अंधकार। आज विज्ञान के पीछे सब लोग पागल हो गए हैं, अपने सभ्यता संस्कृति को त्याग दिए हैं। लेकिन विज्ञान थोड़ा भी यदि हम सोचे, बुद्धि लगाएं बैठ कर करके, तो हम समझ सकते हैं कि विज्ञान कितना हमें हानि पहुंचा रहा है। हमारे पास खाने पीने का चीज नहीं रह गया है, हम लोग केवल केमिकल खा रहे हैं। चाहे बॉम्बे का, चाहे मीरा रोड का सब्जी खाओ, चाहे जीव का सब्जी खाओ, टेस्ट एक ही है। चाहे कलकत्ता का सब्जी खाओ, टेस्ट एक ही है, क्योंकि सब केमिकल का बना हुआ है। ये सत्य बात है। हम लोग के पास जमीन है कानपुर में, हम लोग स्वयं अपना सब्जी उगाते हैं। एक गांव वाला आया और कहा, हमारे एक भक्त हैं हरिप्रिया जी, कि प्रभु जी अरे आपका लौकी छोटा छोटा होता है, हमारा लौकी बड़ा होता है। अच्छा कैसे? क्या आप देखना चाहेंगे? हाँ आपको दिखाते हैं। वो शाम को आया, एक इंजेक्शन दिया, एक छोटा लौकी था इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया रात भर में। तो मैं कहा, रात भर में यदि लौकी इतना बड़ा हो गया तो खाने वाला कितना बड़ा होगा? एक केमिकल है। दूध का ही ले लीजिए, कहते हैं शुद्ध गाय का दूध। गाय कितनी रह गई इंडिया में? पहले घर घर में गाय थी, अब समय आ रहा है कि घर घर में कुत्ते रहेंगे, गाय नहीं रहेगी। तो ये गाय का दूध कहां से मिल रहा है? सब केमिकल है, यूरिया है। तो विज्ञान जो है वो नष्ट कर रहा है वास्तव में। आज जरूरत है हम लोगों को भारतीय बनने का, और भारतीय वह है जो अपने सभ्यता संस्कृति को इंटैक्ट रहे, जो कृष्ण भावना का प्रचार करे। तो वोट फॉर इंडिया, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमिति हैलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। एक होता है उपकार और एक होता है परोपकार। उपकार मतलब निडी व्यक्ति को कुछ चाहिए दे दो, और परोपकार मतलब उसे भगवान के पास भेज दो। ये है परोपकार। असली परोपकार है किसी को कृष्ण भावना देना, भगवान के पास भेजना, ये असली परोपकार है। ये भारतीयों का धर्म है। पहले घर में चौपाल, गांव में चौपाल पर लोग बैठते थे। पहले भारत गांव का देश था, शहर का देश नहीं। आजकल टाउन का देश हो गया भारत, गांव वाले भी टाउन बना रहे हैं। तो गांव में चौपाल पर लोग बैठते थे, गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे। आज सब खत्म हो गया, सब लोग टीवी देखते रहते। भारत खत्म हो चुका है। सही में जो आनंद इन ब्रजवासियों को मिल रहा था कृष्ण का गुणानुवाद कर कर करके, वह आनंद केवल कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वैसे ही भक्त लोग जिनका चित्त कृष्ण में लगा हुआ है, मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यंती च रमंत च, जो कृष्ण में लगे हुए हैं, जिनका दिल कृष्ण को दे दिया है अपना, जो दिल अपने मन को अपने चित्त को, वे लोग आनंद में रहते हैं कृष्ण का चिंतन करते हुए, कृष्ण का वार्ता करते हुए। तो ये ब्रजवासी गण, इनका चित्त कृष्ण में लगा हुआ था, कृष्ण के थे ये लोग, इसलिए ये लोग आनंद मग्न होकर के गाते थे। रास्ता का थकावट दूर हो जाता है। पता नहीं आजकल, बहुत दिन से मैं ट्रेन में नहीं चढ़ा, लेकिन मैं कभी कभी आता था ट्रेन से, मैं 78-79 का बात कर रहा हूं, तो बहुत लोग कीर्तन करते थे ट्रेन में। अभी भी करते हैं? करते हैं ना। तो समय भी कट जाता है, भगवान का नाम भी हो गया। ये हमारा संस्कृति है, आजकल खत्म हो चुका है। लगा लो इसमें, सुनते रहो, और नहीं तो कुछ करते रहो। इसको बाप माँ सामने खड़े हैं, लगता है कि मरे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं इधर, बात नहीं करेंगे, समय नहीं है। तो ये ब्रजवासी लोग असली आनंद लेना जानते थे, और असली आनंद लेते थे कृष्ण का चिंतन कर करके, कृष्ण का गुणानुभाव कर कर करके। तो जब यशोदा रानी और रोहिणी जब देखे कि दूसरे गाड़ी वाले जो स्त्रियां हैं वो कृष्ण का गुणानुवाद कर रही हैं, तो ये लोग कृष्ण से, कृष्ण के बिना एक सेकेंड भी नहीं रह सकते थे, तो ये लोग भी करना शुरू किया। वही बात यहां पर कर रहा है। तथा यशोदा रोहिणिया एकम सकट आस्ते, ये रानी थी, यशोदा रानी थी, तो इनका अलग रथ था, इनका अलग बैलगाड़ी था। तो रोहिणी और यशोदा दोनों एक रथ पर स्थित थी, एक बैलगाड़ी पर स्थित थी। इसका मतलब कि सब बैलगाड़ी साथ में ही चल रहा था, और इसमें वर्णन किया गया है किस प्रकार से कुछ पुरुष लोग आगे थे कुछ पीछे थे स्त्रियों का रक्षा करने के लिए, क्योंकि शास्त्र में वर्णन किया गया है कि स्त्रियों का सब प्रकार से रक्षा हो, तीन लोगों का सब प्रकार से रक्षा होना चाहिए, वृद्ध का, स्त्रियों का और बच्चों का। तो उनकी रक्षा करने के लिए ब्रजवासी लोग आगे पीछे थे, लेकिन स्त्रियों के साथ में पुरुष नहीं थे। यह है सभ्यता। पहले गांव में दलान हो, जाने दलान जानते हैं ना, दलान होकर था, दलान जहां पुरुष रहते थे और स्त्रियों का अलग घर था, स्त्रियां अलग रहती थी पुरुष लोग अलग रहते थे। आज से 5000 वर्ष पहले भी जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के गोकुल गए थे तो वहां पर शब्द आया हुआ है जसोदा भवने, जसोदा जी के भवन में लेकर के गए, नंद भवने नहीं कहा गया है, नंद बाबा के रहने का स्थान अलग था और जसोदा के रहने का स्थान अलग था। स्त्री पुरुष प्राय मिला नहीं करते थे, पर्दा था, सम्मान था, प्रेम था, बार बार मिलने से वो प्रेम खत्म हो जाता है, बहुत दिन के बाद मिलने से प्रेम रहता है। पहले गांव में एक पत्र आता था किसी का, सब गांव वाले करीब डाकिया आया है पत्र लेकर के, अब पत्र आए या ना आए कौन पूछता है, आजकल तो कितना हो गया एसएमएस कर दो, ईमेल कर दो। सही में वह आनंद नहीं रह गया है जो भारत का आनंद था, आज हमको विदेश का आनंद थोड़ा सा मिल रहा है, वो भी आनंद नहीं है। भारत के आनंद में आनंद था, आज के आनंद में निरानंद है। होली दिवाली जितने हमारे त्योहार थे, कितना आनंद था होली में, होली के समय, दिवाली के समय, इतना लाइट गांव वाले देखे ही नहीं थे, अब तो इतना लाइट है कि चाहे अब वो लाइट जलाओ तो ये लाइट बंद करना पड़ेगा, फिर भी वो मजा नहीं आता। घर घर में आकर मिठाई खाते थे, अब मिठाई से लोगों को नाक में सिकोड़ लेते हैं मिठाई देकर के, लोग बड़े हो गए। तो रियली हम लोग कृष्ण भावना भावी जो भक्त लोग हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो है कि कृष्ण भावना का प्रचार किया जाए और लोगों में सभ्यता संस्कृति पुनः संचारित किया जाए। ये कितना सुंदर बात है कि स्त्री अलग पुरुष अलग, पुरुष लोग स्त्रियों का रक्षा करते थे और इस प्रकार से यहां देखा था कि स्त्रियों का गाड़ी अलग था और पुरुषों का अलग था, यहां पर जसोदा रानी का अलग, यहां पर तथा जसोदा रोहिणिया एकम शकट आस्ते, एक बैलगाड़ी में जसोदा रोहिणी बैठी थी। फिर कहते हैं रेजतु कृष्ण रामाभ्याम, और साथ साथ वे कृष्ण और बलराम को भी साथ में, कृष्ण बलराम छोटे थे तो साथ में वो लोग ले थे। और इस प्रकार से कृष्ण बलराम के साथ में यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रेजतुम, देखने में बड़े सुंदर लग रहे थे। तो सही में जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण आ जाते हैं वह व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक बात कि ये जो हमारे लड़के हैं लड़कियां हैं, ये जो ब्रह्मचारी लड़के हैं, ये लोग पहले हिप्पी थे, बड़ा बड़ा बाल, पता नहीं साल में कब स्नान किए होंगे, देखने में बड़े अगली लगते थे, ड्रग लेते थे। आज देखिए ये लोग बाल सेविंग कराए हैं, तिलक धारण किए हैं, गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, दे लुक लाइक बैकुंठ मैन। तो आज कहते लगता है कि बैकुंठ से आए हुए हैं। भक्तों का चेहरा आप देखिए और जो भक्त नहीं है उसका चेहरा देखिए, देखिए कितना अंतर है। मैं कभी कभी गांव जाता हूं तो हमारे साथ के हमारे जो क्लासमेट लोग हैं जो मिलते हैं सब दांत टूट गया, एक भी दांत नहीं रह गया, पूरा मुंह काला पड़ा हुआ है, खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बाल झड़ गया, सब खत्म हो गया, देखने में बड़े अगली लगते हैं। लेकिन जो भक्त लोग हैं, हमारा एक बेचारा भक्त था प्रभुदास, प्रभुदास का फेमस अभी नहीं रहा, कहा कि भक्त लोग हमेशा जवान रहते हैं, भक्त लोग जवान रहते हैं क्योंकि तीन बार स्नान करते हैं, शुद्धता रहती है, पूर्णपुण तिलक धारण किए हुए हैं, कंठी धारण किए हुए हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, किसी प्रकार का व्यसन नहीं है, तो चेहरा भी देखने में अच्छा लगता है, दांत भी साफ लगता है, दुर्गंध भी नहीं आता है, तो भक्त बनने में अच्छा बहुत बचत भी बहुत होता है, नहीं तो खैनी और तंबाकू खाने में पैसा होता है ना, भक्त बनने में नहीं लगेगा। तो जो कृष्ण को अपना लेता है वो सुंदर हो जाता है, रेजतो सौंदर्यशाली हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जब सूर्य उदित होते हैं तो आकाश और बादल लालिमा से सुंदर लगते हैं सूर्य के प्रजेंस से, ठीक वैसे ही जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण आ जाते हैं, जो कृष्ण को अपना लेता है, जो कृष्ण का भक्त बन जाता है, वो सुंदर लगता है, देखने में भी सुंदर लगता है, उसका आचरण भी सुंदर होता है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, गौर निकाय की जय, उसका आचरण भी सुंदर होता है, सम्माननीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। हम लोग देखे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अमीरस खाओ जाओ, ये कितना साल का, 20-25 साल का लगा होगा, कितना अच्छा लगता है, बैठ जाओ। बड़े बड़े लोग हरे कृष्ण बोलते हैं महाराज, हरे कृष्ण महाराज, ये छोटा बच्चा तुम पढ़ाओ, अब ये तिलक पहन करके से जाएगा तो कितना ही बड़ा आदमी होगा, आज का स्वामी जी हरे कृष्ण, ये छोटा बच्चा है ना, उन्हें क्या करे, तुम तो छोटा है, तुम कहा हरे कृष्ण बोलो, वो बोलेगा प्रणाम करेगा, पढ़ जाओ। तो कृष्ण का भक्त बनने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। रेजतुम शब्द आया, रेजतुम मतलब सौंदर्यशाली, वेरी ब्यूटीफुल, देखने में वो सुंदर हो जाता है, उसका आचरण सुंदर हो जाता है, उसका व्यवहार सुंदर हो जाता है, उसका सौंदर्य सुंदर हो जाता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सब सुंदर लगते हैं। जब तिलक कोई करता है तो कितना अच्छा लगता है, नहीं तो श्मशान घाट जैसे लगता है पूरा। तिलक से अच्छा लगता है, तिलक करना चाहिए, कंठी धारण किए हैं कितना अच्छा लगता है, कंठ है कंठी धारण करने के लिए। तरेज तुम कृष्ण रामाभ्याम, कृष्ण और बलराम को अपने गोद में ली थी यशोदा मैया और रोहिणी जी। अब देखिए ऐसी परिपाटी थी कि रोहिणी जी कृष्ण को धारण करती थी और यशोदा जी बलराम को धारण करती थी। ये है प्रेम की परिपाटी। पहले बच्चे घर में अपने चाचा चाची या बड़े पिताजी के साथ में ज्यादा रहते थे, बाप से डरते थे, दादा के साथ में रहते थे, दूसरों के साथ में, अरे अपना तो अपना ही है ना, दूसरों का अपना बनाओ वो बड़ापन है, और लोग जानते यही सभ्यता संस्कृति है। यशोदा जी बलराम जी को अपने पास रखती थी और रोहिणी जी कृष्ण को अपने रखती, यह है प्रेम का परिपाटी। अपने से पराए का देखभाल करने में ज्यादा आनंद होता है। यदि साले का बेटा घर पर आ गया हो तो देखिए, साले का बेटा घर पर आ गया हो तो देखिए आपकी पत्नी कितना उसका देखभाल करती है, खूब अच्छा चीज खिलाएगी, अपना बेटा है भैया है ना उसको लिखाने से तुम बात बताना। इसमें आनंद है, सही में आनंद है, इस संस्कृति बदलाती है हमारी सभ्यता बदलती। तो रहिए तू कृष्णा माभ्याम तत्कथा श्रवणो उत्सुके। तो इसलिए मानो कान लगाकर सुन रहे थे कि लोग क्या कह रहे हैं कृष्ण के संबंध में, बलराम के संबंध में। श्रीपाद जीव गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम है गोपाल चंपू। उस वह ग्रंथ और कुछ नहीं है बल्कि उस ग्रंथ में नल कुबर और मणिग्रीव जब इन लोगों का उद्धार हुआ तो ये लोग स्तिग्ध कंठ और मधुकंठ नाम के दो भक्त हुए। और ये लोग का काम था कि दिन में पुरुषों के, दिन में स्त्रियों के बीच में और रात्रि को पुरुषों के बीच में कृष्ण के भौम लीला का वर्णन करना, इस पृथ्वी पर जो कृष्ण बलराम लीला किए थे उसका वर्णन करना। तो भक्तों को अच्छा लगता है सुनना। यशोदा रानी और रोहिणी भक्त हैं, इन लोगों को अच्छा लगता है जब अन्य गोपियां बात करती है। उतना ही नहीं, ये तो भक्त है इसलिए अदरवाइज भी यदि कोई हमारे बेटे का प्रशंसा करता है तो अच्छा लगता है ना है? कोई बेटे का बुराई करता है तो दुख लगता है, बल्कि हम झगड़ा करते हैं हमारा बेटा अच्छा है क्यों झगड़ा ऐसा करते हो, जो अच्छाई करता है अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से तत्कथा श्रवणो उत्सुके, वो उत्सुक थे, बड़े इंथुजियास्टिक थे उसको सुनने के लिए, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो इस श्लोक से तीन चीज देखने को मिलता है, शिक्षा प्राप्त होती है। एक चीज कि हम लोगों का जीवन जो है उसमें आनंद तब है जब कृष्ण हमारे जीवन के केंद्र बिंदु रहे, हमारे सौंदर्य में वृद्धि हो जाएगी जब कृष्ण हमारे केंद्र बिंदु रहे, यानी हम कृष्ण भावना भावित हो जाए तब। और दूसरा, परायणता, भगवत परायणता की शिक्षा मिलती है कि कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे। और तीसरा, कृष्ण कथा सुनने में उत्सुकता रखनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। भक्ति तब बढ़ती है जब उत्सुकता होती है। रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चया धौर्या तत्त कर्म परिवर्तना संग त्यागो सदोवृत्ति सदवीर भक्ति प्रसिद्धति, उत्साह। तो जहां भी कथा हो सुनने चले जाना चाहिए, प्रोवाइडेड वो शुद्ध कथा हो। सुखदेव गोस्वामी जब कथा कह रहे थे तो लोक लोकांतर से ऋषि लोग आए थे, स्वर्ग लोक से आए थे, ब्रह्मलोक से तक आए थे, गंगा जी में डुबकी लगाए और सुखताल पहुंच गए, भागवतम ऐसा प्रणाम। तो जब कथा हो तो कथा में उत्सुकता पूर्वक कथा सुनना चाहिए, एकांतिक भाव से, क्योंकि जो कथा है वह बड़ा पुण्य काम है। श्रोताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृष्टताम, दिल को साफ कर देता है, समस्त कामनाओं को वासनाओं को खत्म कर देगा यह हरि कथा। तो हम लोगों को हरि कथा सुननी चाहिए और हर कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तब ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नया घर में कब जाऊंगा, बहुत दिन यहां रह चुके हैं, अब सब लोगों को समय आ गया है कमर कसने का, सब लोग तैयार हो जाओ, आप जितना जल्दी हो सके ठाकुर जी को वहां पर उनके पैलेस में स्थापित किया जाए। भगवान को ज्यादा ज्यादा गर्मी अच्छा नहीं लगता है, ओ एक कथा है ना चैतन्य चरितामृत में गोपाल जी का, माधवेंद्रपुरी का है, वो सपना दिए और माधवेंद्रपुरी से कहे कि भाई देखो मैं जाड़ा गर्मी सहता हूं, अब एकदम शरीर गर्म हो गया है, थोड़ा जाओ जगन्नाथपुरी से कुछ चंदन लेकर के आओ थोड़ा लेप करने के लिए। भगवान को अटेंशन चाहिए। मंदिर जो है, मैं आज सुबह में बता रहा था जुहू में कि प्रभुपाद जी से वाजपेयी जी पूछे थे कि स्वामी जी इंडिया में बहुत मंदिर है, आप मंदिर क्यों बना रहे हो? प्रभुपाद ने कहा कि मैं मंदिर नहीं बना रहा हूं, मैं हॉस्पिटल बना रहा हूं। हॉस्पिटल? हाँ, ये ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर अन्य हॉस्पिटल से जवाब मिल जाए तो उसका दवा यहां मिलता है। सब डॉक्टर बोलेंगे हमारे पास अब इसका दवा नहीं, ले जाओ ये मरने वाला है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो आर्गुना आर्ता तात जिज्ञासु ज्ञानी च वर्तसो। आर्थ व्यक्ति यहां आता है, अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी सब लोग आते हैं। तो यहां पर दवा मिलती है, किस चीज का दवा मिलता है? भव रोग का। इसका दवा कहीं नहीं है, भव रोग का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दवा नहीं कहीं पर है, लेकिन मंदिर में दवा मिलेगा उसका। मंदिर प्रचार का सबसे बड़ा साधन है, हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, ग्रंथ लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, साधुओं का संगति करते हैं। तो मंदिर जो है वह प्रचार का सबसे महत्वपूर्ण स्थल ही है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु दो चीज करने के लिए कहे, एक ग्रंथों का लेखन और दूसरा मंदिर का निर्माण। ये हमारी परंपरा में है। सद गोस्वामी लोग मदन मोहन गोविंद देव गोपीनाथ का मंदिर स्थापित किए, वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी हमारे परम गुरु महाराज, वे भी गौड़ीय मठ के कई एक मंदिर स्थापित किए, प्रभुपाद जी स्थापित किए अरे गुरु जी, और उन्हीं के रास्ते पर चल करके हम लोग मंदिर स्थापना कर रहे हैं। तो सब लोग अब कमर कस लो, तैयारी करो अब कि जल्दी ठाकुर जी अपने, हमें याद है जब से राधा गिरिधारी जी यहां पर आए बाइंदर में हैं, पहले कहां छोटे जगह पर गड़ौरिया जी के उसमें बाइंदर में, वहां से यहां आए, अब यहां से स्थान पर बहुत दिन हो गया। कितना दिन हो गया मंदिर बनते हुए? 20 साल से ठाकुर जी पतरा में रह रहे हैं, अब समय आ गया, ठीक है ना? चलो तैयार है ना? तो मंदिर का उद्घाटन कब होना चाहिए बताइए आप लोग? जन्माष्टमी में, तो बस अब 4 महीने बाकी रह गया है। तो सबको तैयारी करना पड़ेगा, पॉकेट थोड़ा ढीला करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। अब मार्बल खरीदने अफरत खरीदेगा, पहले तो मंदिर के नाम पर लोग देते थे फ्री, आजकल तो साधुओं से भी टैक्स लेते हैं। हमारे आए थे टोल टैक्स वाला, क्या अगर हरे कृष्ण गाड़ी है कोई बात नहीं, पैसा दे दो, पहले साधुओं को नहीं पहचानते। चलिए करते हैं काम, धन्यवाद। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण। तो इस ग्रेस देवकी नंदन प्रभु ने भारतीय संस्कृति और उसका आचरण कृष्ण को बीच में रखे, सेंटर में रखे कैसे करना चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से हमको बताया। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार अभिवादन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और हम उनसे निवेदन करते हैं आप सबकी तरफ से ऐसे ही इस राधा गिरधारी मंदिर को समय देते रहे, चाहते हैं ना सब लोग? और कुछ अनाउंसमेंट है, अगले रविवार को अचिंत्य चक्र प्रभु और जीवन कृष्ण प्रभु दोनों के काउंसलिंग के द्वारा सेवा है। तो आप अचिंत्य कृष्ण प्रभु और जीवन कृष्ण प्रभु ध्यान रखिए, अपने काउंसिल मेंबर को अगले रविवार को अपनी सेवा में लगाइए। और 2 मई शुक्रवार से चंदन यात्रा की शुरुआत होती है, अक्षय तृतीया। तो आप सभी से निवेदन है उस दिन आप सभी यहाँ दर्शन के लिए खास पधारिए, भगवान को चंद अभी बताया कि भगवान को गर्मी लगती है तो ये अक्षय तृतीया के दिन से भगवान को चंदन लगाया जाता है और स्पेशल दर्शन है। तो आप सभी से निवेदन है आप शुक्रवार 2 में अक्षय तृतीया को भगवान के खास दर्शन के लिए पधारिए। हरे कृष्णा हरे
महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मणे वैष्णवे।